mic. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। आज हम श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद के तीसरावा अध्याय, इनका शीर्षक है कृष्ण जन्म, श्लोक संख्या नंबर 25। कृपा करके इन श्लोकों को मेरे पीछे दोहराइए। मैं वैसे महाराज जी का आज क्लास था, किसी कारण वह आ नहीं पाए तो इमरजेंसी में मुझे बोला गया, तो कुछ तैयारी में कुछ कमी हो गई रहेगी तो क्षमा करिए। सभी लोग मेरे पीछे इन श्लोकों को उच्चारण करिए। नष्टे लोके द्विपराधा अवसाने महाभूतेषु आदिभूतं गतेषु व्यक्ते अव्यक्तं कालवेगेन याते भवान् एक शिष्यते अशेष सम्मज्ञा। नष्टे लोके द्व्यपरार्धाव नष्टे लोके द्विपरार्धवासने नष्टे लोके द्विपरार्धवासने महाभूतेष्व आदिभूतं गतेषु महाभूतेषु आदिभूतं गतेषु व्यक्ते व्यक्तं कालवेगेन याते व्यक्ते व्यक्तं कालवेगेन याते भवान् एक शिष्यते शेष सम्यग्ना। भवान् एक शिष्यते शेष सम्यग्ना। नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेषु आदिभूतं गतेषु व्यक्ते अव्यक्तं कालवेगेन याते भवान् एक शिष्यते शेष सम्यग्ना। शब्दार्थ इस प्रकार है, नष्टे संहार के बाद, लोके विश्व के, द्विपदात अवसाने लाखों वर्षों के बाद, ब्रह्मा जी की आयु, महाभूतेषु पंच प्रभा पंच प्रारंभिक तत्वों, क्षिति जल पावक गगन तथा समीर में, आदिभूतम गतेषु इंद्रिय बोध के सूक्ष्म तत्वों के भीतर प्रवेश करते हैं, व्यक्ते प्रकट होने पर, अव्यक्तम अव्यक्त में, काल वेगेन काल के वेग से, याते प्रवेश करता है, भगवान आप एक केवल एक, शिष्यते रहता है, अशेष संज्ञा विभिन्न नामों से युक्त वही एक। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। लाखों वर्षों के बाद विश्व संहार के समय एक शरीर व्यक्त तथा अव्यक्त वस्तुएं काल के वेग से नष्ट हो जाती है, तो पंचो स्थूल तत्व सूक्ष्म रूप ग्रहण करते हैं और व्यक्त वस्तुएं अव्यक्त बन जाती है। उस समय आप ही रहते हैं और आप अनंत शेष नाग कहलाते हैं। एक बार फिर कहता हूं, लाखों वर्षों बाद विश्व संहार के समय जब सारी व्यक्त तथा अव्यक्त वस्तुएं काल के वेग से नष्ट हो जाती हैं, तो पांचों स्थूल तत्व सूक्ष्म रूप स्वरूप ग्रहण करते हैं और व्यक्त वस्तुएं अव्यक्त बन जाती हैं। उस समय आप ही रहते हैं और आप अनंत शेष नाग कहलाते हैं। तात्पर्य, संहार के समय पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश ये पांच स्थूल तत्व मन बुद्धि तथा अहंकार में प्रवेश कर जाते हैं और सारा विश्व उस भगवान की आध्यात्मिक शक्ति में प्रवेश करता है जो हर वस्तु के उद्गम होने के कारण बचे रहते हैं। इसलिए भगवान शेषनाग आदि पुरुष तथा अन्य अनेक नामों से जाने जाते हैं। इसलिए देवकी के प्रार्थना की लाखों वर्षों बाद जब ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती है तो इस विराट जगत का संहार होता है। उस समय पांचों तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश महतत्व में प्रवेश करते हैं। यह महतत्व समय के वेग से अव्यक्त संपूर्ण भौतिक शक्ति में प्रवेश करता है और यह संपूर्ण भौतिक शक्ति शक्तिमान प्रधान में तथा यह प्रधान आप में प्रवेश करता है। इसलिए संपूर्ण जगत के संहार के बाद केवल आप अपने दिव्य नाम रूप गुण तथा सहज सामान के साथ रहते हैं। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप अव्यक्त संपूर्ण शक्ति के निर्देशक हैं और प्रकृति के चरण आगार हैं, प्रकृति के चरम आगार हैं। हे प्रभु, यह समुचित विराट जगत क्षण से लेकर वर्ष पर्यंत की अवधि काल के प्रभाव के अंतर्गत है। सारे लोग आपके निर्देशानुसार कार्य करते हैं। आप सबके आदि निर्देशक है और समस्त शक्तियों के आगार है। होम ज्ञान तिमिरांदस्य ज्ञानांजन शलाख्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामियं तथापि स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतपतकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रुग्णाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषुभानुसुधे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो यहाँ पर देवकी माता भगवान कृष्ण की स्तुति गाते हुए बता रही है कि किस प्रकार ये भौतिक जो संसार है ये प्रलय में डूबने के पश्चात कौन बाकी रह जाता है। तो कहती है कि आप ही एकमात्र शेष रह जाते हो, बाकी पूरा जो संसार है वो इस प्रलय में डूब जाता है। तो क्योंकि भगवान एकमात्र शेष रहते इसलिए उनका एक नाम है शेष, तो वही भगवान रह जाते हैं और पूरा संसार भौतिक संसार इस प्रलय में डूब जाता है। और इसी बात को यहाँ पर वर्णन करते हुए ये बताती हैं, नष्टेस लोके विपराधन अवसास नष्टे लोके द्विप्रधार्थ धावसाने। तो कहती है कि नष्टे इस संसार को नष्ट के समय पर जो संसार में जो प्रलय आता है, जो तीन प्रकार का प्रलय है, एक प्रलय जो कि स्वर्ग के नीचे भाग तक प्रलय होता है जिसको कहते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में वो प्रलय होता है। तो जब ब्रह्मा जी जब एक दिन के पश्चात जब सोने जाते हैं तो वो जब सोने के समय पर पूरा जो स्वर्ग के निचले भाग तक प्रलय में सब डूब जाता है। और जब ये एक प्रकार का प्रलय है और इस प्रकार ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक आयु के 100 वर्ष जीते हैं और जब 100 वर्ष जब आयु जब ब्रह्मा जी का पूर्ण होता है तो ब्रह्मा जी वो स्वयं प्रलय में डूब जाते हैं। और तीसरा प्रकार का प्रलय है जो कि जब महाविष्णु जब श्वास लेते हैं तो अनेक जितने भी ब्रह्मा जी हैं वो सारे ब्रह्मा जी सारे ब्रह्मांड जो कि महाविष्णु के गर्भ में प्रवेश करते हैं। तो ऐसे पूरा जो संसार जो है प्रलय के अंतर्गत में आ जाता है। और इसे नष्ट करने के लिए ब्रह्मा जी ने रुद्र को इसका इस कार्य को सौंपा है। जब ब्रह्मा जी ने जब चतुर्कुमार को जब उत्पन्न किए थे तो उनके उत्पन्न करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने चतुर्कुमार को कहा कि सृष्टि की रचना करो तो उन्होंने जब वेद ज्ञान को सब प्राप्त किए तो चतुर कुमार ने कहा कि हम ग्रस्त संसार में नहीं, हम ब्रह्मचारी ही ठीक है। तब उस समय ब्रह्मा जी को क्रोध आया, जिस क्रोध से उनके मस्तक से, उनकी भ्रुगुटी से रुद्र का जन्म हुआ, रोता हुआ एक बालक का जन्म हुआ। और क्योंकि वो रोता हुआ जन्म लिया इसलिए उनका नाम पड़ा रुद्र। और फिर उन्होंने उनको कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो। तो जब उन्होंने अपने आप का विस्तार करते गए 11 रुद्र में विभाजन करने के बाद, ब्रह्मा जी ने उनको विस्तार के लिए जब आज्ञा दिया तो उन्होंने जब अपने विस्तार करते गए तो जितने भी उनके अनुचर थे वो सभी लोग सृष्टि को बनाने के बजाय सब तोड़ फोड़ करना शुरू किया। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि ये तो सृष्टि करने योग्य नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम चुपचाप केवल एक जगह बैठकर तपस्या करो, जब तोड़ फोड़ के लिए जब काम होगा तो बुलाया जाएगा। तो इसीलिए वही रुद्र को प्रलय के लिए उपयोग किया गया है और उनको वो सेवा दिया गया है। तो वैसे ब्रह्मा जी का यहाँ पर बताया गया है कि ब्रह्मा जी की आयु में पूरा संसार प्रलय में डूब जाता है। तो ब्रह्मा जी की आयु के विषय में बताया जाता है, जो कि भगवान, जो ये जो भौतिक जो संसार है, इस भौतिक संसार के जो चतुर्युग जो है, सत्य त्रेता द्वापर कली, तो कली युग का 432,000 है। इसे अगर दुगना कर दिया जाए तो 864,000, जो कि द्वापर युग का होगा, उसकी अवधि, द्वापर युग की अवधि जो कि कली युग का दुगना है, और त्रेता युग की अवधि जो कि कली युग का 3 गुना है, और सतयुग की अवधि जो कि कली युग का 4 गुना है। ऐसे सत्य त्रेता द्वापर कली, ये जब 1,000 बार जब इसका चक्र घूमता है तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। अब इस 1 दिन में भी, वो भी क्या, 12 घंटा, और 12 घंटा इस प्रकार रात होता है। ऐसे ब्रह्मा जी की 1 दिन पूर्ण होता है। तो वैसे ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीते हैं। तो अभी जो ब्रह्मा जी की जो आयु है, ऐसे बताया गया है कि 51 वर्ष का 28वां युग चल, ये जो साइकिल चल रहा है, तो ये 28वें युग साइकिल में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ है। तो वैसे ब्रह्मा जी के 1 दिन में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। तो वैसे 51 दिवस का 28वां, यानी कि ये ब्रह्मा जी का पहला दिन चल रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि ब्रह्मा जी का बर्थडे चल रहा है, हैप्पी बर्थडे कह सकते हो उसे। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी और 50 साल जिएंगे। जब 100 साल पूर्ण होगा तो ब्रह्मा जी भी महाविष्णु के गर्भ में प्रवेश करते हैं। पूरा जो संसार है वो प्रलय में डूब जाता है। तो ये जो भौतिक संसार के प्रलय के विषय में यहाँ पर चर्चा की गई है कि महाभूतेषु आदिभूतम गतेषु, ये जो पंचभूत जो है वो और सूक्ष्म वस्तु में प्रवेश करता है, जो कि इंद्रिय बोध के सूक्ष्म तत्व के भीतर प्रवेश करते हैं, और यही उसके पश्चात ये अव्यक्त प्रधान में प्रवेश करता है। तो ये कैसे, ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, और वही जो उत्पन्न होता है उसका ही रिवर्स जो होता है, उसको जब रिवाइंड किया जाता है तो उसको कहते हैं प्रलय। तो भगवान कृष्ण से विस्तार हुए बलराम जी, बलराम जी से विस्तार हुए शंकरसन, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और इनसे जो शंकरसन से महाविष्णु का अवतार हुआ, और महाविष्णु ने जब अपने जब श्वास जब छोड़े तो जिस प्रकार हमारे शरीर में रोम है उसी प्रकार अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके शरीर में उत्पन्न हुआ। और यही महाविष्णु गर्भोदक्षय विष्णु के रूप को धारण कर हरेक ब्रह्मांड में प्रवेश किया। तो वो दूसरा अवतार हुआ। अब ये गर्भोदक्षय विष्णु ने जब अपने उन्होंने जब इच्छा किया तो उनके गर्भ से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। नाभि उनके गर्भ से नाभि कमल प्रकट हुए, उस नाभि कमल में ब्रह्मा जी जन्म लिए। और इस प्रकार उन्होंने ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। तो ये जो सृष्टि की जो रचना है वास्तविकता में उन्होंने जब पूरा जो भूमंडल की जब निर्माण किए सब कुछ उन्होंने जब भगवान के आज्ञा के अनुसार जब निर्माण किया तो कोई भी वस्तु अपने आप में चलायमान नहीं था, किसी में हलचल नहीं था और सभी वस्तु ने अपने धर्म को खोया हुआ था। जैसे जल है अग्नि है इनका अपना अपना एक धर्म है। जैसे जल का धर्म है तरलता लेकिन उसके अंदर वो स्वभाव दिख नहीं रहा था। तो वही ब्रह्मा जी ने जब प्रार्थना किए तो वही गर्भोदक्षय विष्णु ने और एक अवतार लिए जो कि शिरोदक्षय विष्णु के रूप में हर एक अणु में प्रवेश किए। तब जाकर हर एक वस्तु अपने आप में चलायमान हुआ और फिर उनके अंदर अपने धर्म प्रकट हुए। तो वैसे भगवान ने ऐसे तीसरे अवतार लिए, वो है शिरोदक्षय विष्णु। तो जो भी इसे कहते हैं पुरुष अवतार, तो जो अवतार भगवान की सृष्टि की लीला के साथ जुड़ा हुआ है तो उसे कहते हैं पुरुष अवतार। और जो भगवान के आध्यात्मिक धाम में जितने विस्तार हुए उसे कहते हैं विस्तार। तो वो भगवान के एक्सपांशन है और ये भगवान के इनकार्नेशन अवतार माने गए हैं। तो वैसे भगवान तीन अवतार लेते, एक है सृष्टि, एक है कृपा लीला, दूसरा है सृष्टि लीला, तीसरा है तो कृपा लीला है जो कि कृपा करने के लिए भगवान स्वयं इस धरातल में आते हैं, और सृष्टि लीला जो कि भगवान जब इस धरा इस संसार को चला उत्पन्न करना है तो वही भगवान सृष्टि लीला के रूप में प्रकट होते जो कि ये पुरुषावतार जो कि हमने अभी चर्चा की है। और इस तरह भगवान वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस धरातल में सृष्टि की रचना करने के लिए अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। तो वैसे इस सृष्टि की रचना के विषय में बताया जाता है कि जब महाविष्णु ने जब महाविष्णु का जब अवतार हुआ तब उन्होंने अपनी दृष्टिपाद की प्रधान पर, तो ये जो प्रधान जो है ये आध्यात्मिक धाम में माना गया है, जो भी भौतिक जगत है वास्तविकता में आध्यात्मिक धाम में है। जब उन्होंने अपनी दृष्टिपाद की तो उनके दृष्टि से दो शक्ति निकली, एक है काल शक्ति दूसरा है जीव शक्ति। और ये काल शक्ति और जीव शक्ति जब उस प्रधान में जाके प्रवेश किए, प्रधान क्या है, ये प्रधान जो कि भौतिक संसार अव्यक्त रूप में उपस्थित है, तो उस अव्यक्त रूप में जिसमें प्रकृति के तीन गुण से बना हुआ, ये जो अव्यक्त जो कि प्रकृति के तीन गुण उसमें मिश्रित है, जिसमें भगवान अपनी काल शक्ति और जीव शक्ति से अपना शक्ति उसमें प्रधान करते हैं, और जिस कारण से उस प्रधान में बहुत जोर से आवाज़ आती है और ये आवाज़ होकर उसमें एक स्वर्ण कलर का एक गोला तैयार होता है। और ये जब स्वर्ण कलर का जो गोला जिसके जिसके अंतर प्रकृति के तीन गुण अलग अलग अहंकार के साथ जब संपर्क में आती है तो अलग अलग वस्तु की उत्पत्ति करती है, तो यही प्रधान के अंतर्गत ये भगवान की जो काल शक्ति और जीव शक्ति का प्रवेश होता है। और ये जब प्रकृति के तीन गुण जब अहंकार को जब संपर्क में आती है, तो ये जब सत्वगुण के जब संपर्क में ये प्रकृति के तीन गुण आते हैं, तो बताया जाता है कि मन की उत्पत्ति होती है और देवताओं की उत्पत्ति होती है। और यही जब प्रकृति के तीन गुणों का जो रजोगुण है उसके संपर्क में जब जब अहंकार का जब संपर्क होता है, तब बताया गया है कि बुद्धि और पांच कर्म इंद्रिय और पांच ज्ञान इंद्रिय की उत्पत्ति होती है। आंख नाक कान जीभ त्वचा जो कि ज्ञान इंद्रिय, और हाथ पैर मुंह गुदा और जननेंद्रिया जो कि कर्म इंद्रिय। ऐसे वही जब तमोगुण के संपर्क में जब अहंकार का जब संपर्क होता है, तब पंच स्थूल वस्तु की उत्पत्ति होती है जो कि मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, और पांच तन मात्राएं जो कि रूप गंध स्पर्श और रूप गंध स्पर्श और रस। तो ऐसे पांच तन मात्राएं की उत्पत्ति होती है, और जो पांचवा जो है शब्द। तो इस प्रकार पूरे मिलाकर 23 तत्व की उत्पत्ति है। तो क्या क्या? पांच कर्म इंद्रिया, पांच ज्ञान इंद्रिया 10, और पांच स्थूल वस्तु 15, और मन बुद्धि अहंकार 18, और साथ में पंच तन मात्राएं 18 और 5 23, और फिर उनके साथ अहंकार जो कि 24, और एक पांचवा जो है चित्त शक्ति। इस प्रकार पूरे मिलाकर 25वा जो चित्त शक्ति और 26वा महातत्व, ऐसे पूरे मिलाकर 26 तत्व से ये पूरा जो भौतिक संसार की उत्पत्ति हुई है। और इस प्रकार भगवान अपने केवल दृष्टिपाद से ये सारे संसार की उत्पत्ति करते हैं। और यही जब प्रलय में जब डूबता है, तो यही जो स्थूल वस्तु वो सूक्ष्म वस्तु में प्रवेश करता है, और अंततः अथवा महातत्व में प्रवेश करकर वो अव्यक्त रूप में प्रवेश हो अव्यक्त रूप में बदल जाता है। और पूरा जो भौतिक जो संसार है वो महाविष्णु के गर्भ में प्रवेश करता है। तो जैसे ब्रह्मा जी का जब 100 वर्ष जैसे ही पूरा होता है, उसी क्षण भगवान जो कि श्वास जैसे ही लेते हैं, तो पूरा जो भौतिक संसार सब महाविष्णु के गर्भ में प्रवेश कर लेता है। तो जितने भी जीव आत्मा है वापस उनके गर्भ में प्रवेश कर लेता है, और जब श्वास छोड़ते तो पुनः जीव आत्मा वापस प्रकट होते, और अपने अपने जो उनका जो बैलेंस जो बचा था कर्म का, जो शेष बाकी था अपने कर्म को भुगतने के लिए, उसी कर्म को भुगतने के लिए वापस उसी देह के अंदर प्रवेश करते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद बताते हैं कि अनादि काल से जीवात्मा इस संसार में विषय भोग में लगा हुआ है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कब से है इस संसार में जीवात्मा अनादि काल में। और वो जो जीवात्मा अपने कर्मों को भुगतने के लिए वो अनेक अनेक प्रकार के सृष्टि में वो जन्म लेता रहता है। बुधवा बुधवा प्रलीयते, जैसे जब जब प्रलय होता है तो वो भी चला जाता है, वो भी प्रलय में डूब जाता है। तो यहाँ पर देवकी माता बताती है कि हे भगवान, आप इस प्रकार के प्रलय में भी आपका नाश कभी नहीं होता है, आप शाश्वत हो, जो कि जिनके अंदर किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। तो आप कौन हो? अव्यक्त। तो अव्यक्त यहाँ पर इसलिए कहा गया है क्योंकि भगवान इस संसार में उपस्थित होने के बावजूद भी अभक्तों को नहीं दिखाई पड़ता है। जो तो यहाँ पर देवकी माता को ये डर था कि कहीं कंस आकर मेरे ये जो आठवां जो संतान है उसको भी ना कहीं वध कर दे, तो इसलिए वो निर्भयता पूर्वक इस बात को कह रहे कि आप स्वयं इस संसार की सृष्टि और पूरा जो संसार है प्रलय में डूब जाता है, मगर आप शेष रहते हो, तो भला आपको कौन क्या नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस प्रकार यहां पर देवकी माता के जो डर जो था वो वात्सल्य रूप में प्रकट हो रहा था, और निर्भयता जो था वो ऐश्वर्य भाव से प्रकट हो रहा था। और इस तरह यहाँ पर देवकी माता ये प्रार्थना के द्वारा ये बता रही है कि आप किस प्रकार समस्त जीव आत्माओं के एकमात्र पालक हार हो। हरे कृष्ण। क्योंकि मैंने कुछ तैयारी नहीं किया था, बहुत कम समय था, तो जो था वही मैंने बताया। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कुछ टीका टिप्पणी होगा तो जिज्ञासा। हाँ, मैंने तो यही सुना हूँ कि जब तक ब्रह्मा जी सोते हैं, जब तक उनका आँख लगा रहता है, तब तक प्रलय चलता रहता है। तो उतना मैं सुना हूँ। जैसे हम मार्कंडेय ऋषि का, मार्कंडेय ऋषि जो कि प्रलय में डूब रहे थे, हजारों हजारों वर्ष तक वो प्रलय में ही थे, तो कई वर्ष तक प्रलय चलता ही रहता है। जहाँ तक मैं इसके द्वारा मेरी समझदारी, बाकी आप कुछ और सुधार कर सकते। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की।
हाँ।